हरे कृष्ण। देखिए ये जो प्रवचन मैं देने वाला हूं ये एकदम सरल है, प्रभुपाद जी के प्रवचन के ऊपर आधारित है, लेकिन ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक जीवन में जब एक व्यक्ति प्रवेश करता है हम देखते हैं कि अनेक लोग उसमें अरुचि दिखाते हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे गंभीरता आने के बाद वो समझ जाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन हमें बहुत जरूरत है। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब माता अपने हाथ में कुछ प्रसाद लेकर जाती है तो वो तो भागता है, खाने की इच्छा नहीं है उसको, लेकिन बड़े होने के बाद हम लोग अपने अपने प्लेट लेकर खुद ही आ जाते हैं, है ना? लेकिन बचपन में हम भागते हैं दूर। तो इस तरह आध्यात्मिक जीवन में भी हम देखते हैं कि शुरुआत में लोगों को ये दिव्य ज्ञान को प्रदान करने में बहुत बड़ा चुनौती है भक्तों को। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको कुछ इम्पेटस नहीं है, इम्पेटस का मतलब है कुछ कारण नहीं है जिससे वो आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से ले। लोग सोचते हैं कि अनेक लोग बोलेंगे कि हम बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है हमारे पास, लेकिन टेलीविजन देखने के लिए समय है लोगों के पास, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए समय है, इधर उधर घूमने घामने के लिए समय है, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा माला करने के लिए दो माला करो चार माला करो भी बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि समय नहीं है। इसलिए आज हम जो विषय बोलने वाले हैं ऐसा विषय है इसको सुनने के बाद हम आध्यात्मिक जीवन को हम गंभीरता से लेने के लिए मदद करेगा। ये सेशन जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्री सीज दैट गिव स्पिरिचुअल मोटिवेशन, थ्री सीज दैट गिव अस मोटिवेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ। आप देखेंगे इस दुनिया में कि हम लोग जी तो रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता के साथ इस दुनिया में कोई भी नहीं जी सकता। आप देखेंगे अगर आपके पास स्वतंत्रता भी हो लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में दिया जा रहा है, ज्यादा फ्रीडम नहीं है। हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए कोई बोल सकता है कि मैं सरकार के कानून को मानता नहीं हूं, मैं कुछ भी करूंगा, कौन मुझे क्या बोलेंगे। ऐसे ही एक विद्यार्थी था, वो बाइक लेकर सड़क में तेजी से चला रहा था तो अचानक एक ट्रैफिक सिग्नल गिर गया, तो वो भी देखा सब लोग रुक गए लेकिन ये तो आगे जाने लगा, बोला कि कुछ चिंता नहीं है, कोई पुलिस तो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन तुरंत किसी ने विसिल बजाया, तुरंत इनको बाइक को रोका गया, तो 500 रुपया इनको फाइन भरना पड़ा। तो पुलिस ने पूछा उसको, अरे मूर्ख देखा नहीं? वो बोला सिग्नल को तो देखा लेकिन आपको देखा नहीं। ऐसे बोला वो। तो इस तरह आप देखेंगे आमने सामने भगवान दिख तो नहीं रहे हैं सबके सामने, लेकिन उन्होंने कानून बनाया है, विधि विधान बनाया है, जिसको तोड़ने से इंसान को उसका नतीजा को स्वीकारना ही पड़ता है उसको। उदाहरण के लिए अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसके लंग्स खराब हो जाते हैं, है ना? कोई शराब पीता है तो उनके लीवर खराब हो जाते हैं, अगर कोई अवैध संग करता है तो एड्स होता है, एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, तरह तरह की व्याधियां होते हैं इसे। इस तरह अगर कोई, मैंने एक तस्वीर देखा है, इसे एक युवक अपने मुंह में तंबाकू खा रहा है, दूसरे तस्वीर में उन्होंने दिखाया कि वो ही युवक का पूरा छाला बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पूरा अल्सर हो गया, पूरा मुंह में पूरा सड़ने लगा अंदर ऐसे। क्योंकि हम देखते हैं कि इस दुनिया में ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, पूछने वाला कोई नहीं है। हम देख सकते हैं कि दंड रखा गया है हर एक गलत काम के लिए, इस तरह सही काम करो उसके लिए भी फायदा भी रखा गया है। जैसे कोई योगासन करते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कभी योगासन करने वाले 60 उम्र के बाद भी योग जैसे दिखते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसे बनाया है ये दुनिया को, सही करने वालों के लिए भलाई है और गलत करने वालों को रोका जाता है। हम देख सकते हैं इसे गलत दिशा में जाने वालों के लिए, एक हमारा विद्यार्थी था कॉलेज में, वो परीक्षा होने के बाद शुक्रवार शाम को सोया और रविवार को उठा ऊपर, तो उसको पूरा दर्द हो गया इधर बहुत, ये कमर में, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला ज्यादा आपने सोया होगा, आपने 12 घंटे से भी ज्यादा सोया होगा आपने। वो हाँ बोला, कैसे पता चला आपको? वो बोला कि हमारे शरीर सिग्नल देता है, अगर शरीर सोने के लिए बनाया नहीं है ये शरीर, ये शरीर किसके लिए बनाया गया है? आत्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन अगर कोई पोलर बैर मालूम है, बालू अगर वो सोता है, 6 महीने भी सोता है, उसको दर्द नहीं होता उसको, है? इसलिए जिस शरीर को जिस काम के लिए बनाया गया है उसको यूज करना चाहिए। तो पहला चीज प्रभुपाद समझाते हैं कि इस दुनिया में हम सब एक शर्त के साथ जीना पड़ता है। उदाहरण के लिए अभी आप लोग बैठे हैं जमीन में, एकदम शांति से सुख से बैठे हैं आप लोग, लेकिन मान लीजिए एरोप्लेन में आप जा रहे हो ऊपर, जैसे हम एक बार एरोप्लेन में जा रहे थे, तो वो कैप्टन अनाउंस कर रहा था कि हम 10,000 फुट ऊपर हैं जमीन से, हमारा सेफ टेक ऑफ हो गया, कुछ समस्या नहीं। मैंने सोचा किस तरह का टेक ऑफ है सेफ है? अगर कुछ इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई तो प्लेन क्रैश होगा, तो हड्डी भी हम गिन नहीं पाएंगे, है कि नहीं? कभी कभी प्लेन क्रैश होता है। अभी फ्रांस में 3 एरोप्लेन एक ही महीने में क्रैश हुआ, एयर फ्रांस। तो कभी कभी लोग सोचते हैं ठीक है ये क्रैश हो जाएगा तो आगे नहीं होगा, क्योंकि वो लोग सावधानी अपनाएंगे, लोग सोचते हैं, लेकिन एक ही महीने में 3 प्लेन क्रैश हुआ इसे। तो बोलने का मतलब क्या है, हम जब हवा में ऊपर उड़ते हैं हमें थोड़ा डर भी होता है ऊपर। जैसे अभी अमेरिका हम पहले बार जब जा पहुंचे, सब लोग ताली बजा रहे थे एरोप्लेन उतरने के बाद। मैंने पूछा क्यों ताली बजा रहे हैं? पहुंच गए, बोले पहुंच गए, क्योंकि 24 घंटा का ट्रिप था वो। तो इस तरह हवा में एक मनुष्य उतना शांति से ट्रैवल सफर नहीं कर पाएगा। इस तरह पानी में भी अगर आप जहाज में जाते हो, चारों दिशा में आपको पानी ही पानी दिखता है, उसमें भी डर होता है ना। कभी कभी इतना बड़ा तिमिंगल आता है पूरा जहाज को भी उल्टा पुल्टा कर देता है वो, ऐसे एक ऊपर तिमिंगल आएगा, एक तिमिंगल कभी कभी एक आइलैंड जैसा होता है उसका शरीर, इतना बड़ा है। तो डर होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जमीन में आप शांति से बैठ सकते हो, क्योंकि जमीन में बैठने के लिए हमारा शरीर बनाया है। अभी एक दिन प्रभुपाद जी जेम्स पार्क में जा रहे थे अपने में भक्तों के साथ, कुछ बतख बैठे थे और वो तुरंत कूद पड़े पानी में। तो प्रभुपाद जी ने अपने लकड़ी लेकर दिखाया उनको, देखो ये बतख बाहर बैठे थे, अभी पानी के अंदर क्यों कूद पड़े? कारण क्या है? क्योंकि पानी के अंदर वो सुरक्षित है, लेकिन जमीन में कोई भी मनुष्य आकर उसको मारेगा, कुछ करेगा, है ना। इस तरह प्रभुपाद जी बोले कि अगर मुझे आप पानी के अंदर डुबाओगे तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पानी के अंदर हम सुरक्षित नहीं है, जमीन में हम सुरक्षित हैं। इसका मतलब क्या है, ये मनुष्य शरीर का कंडीशन है कि आपको जमीन में ही आप जी पाओगे, हवा में नहीं जी पाओगे, पानी में नहीं जी पाओगे। पानी में हम जाते हैं कभी कभी तैरने के लिए, लेकिन दिन भर हम पानी में नहीं रह पाएंगे, जैसे मछली रहता है। अभी मछली का कंडीशन क्या है, वो पानी में रह पाएगा वो, है? इस तरह पक्षी का कंडीशन क्या है, हवा में उड़ेगा वो हमेशा, आप देखेंगे ऐसे। तो ये कंडीशन है, जैसे हमारे शरीर भी 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें अच्छा लगता है। अभी 25 से गर्मी बढ़े आगे तो लोग तुरंत फैन ऑन कर देंगे, तो एसी ऑन कर देंगे, और नहीं तो अपने कुर्ता को निकालेंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कभी ठंडी मौसम में लोग स्वेटर पहनते हैं, ब्लैंकेट पहनते हैं। इसका मतलब क्या है, ये प्रकृति हमारे ऊपर कुछ पाबंदी डाल रहा है, जिससे हम बचने के लिए हम अलग अलग उपाय ढूंढ निकालते हैं। कोई कोई अपने कार को एसी कार कर देता है, क्योंकि अंदर इतना गर्मी ना हो, नहीं तो अपने कमरे को एसी कर देते हैं, नहीं तो कुछ कुछ कंपनी में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सारे कंपनी के बड़े बड़े हॉल को ही वो एयर कंडीशन कर देते हैं। इसका कारण क्या है, प्रकृति हमारे ऊपर जो पाबंदी डाल रही है उससे बचने के लिए हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम भाग रहे हैं, लेकिन प्रकृति हमें छोड़ नहीं रही है, पीछे पड़ी है, और हमें लगता है, हम देख सकते हैं कि कुछ शर्त डाल रही है। ठीक है, किसी दिन फेस्टिवल हुआ, आपने बहुत बड़ा फीस्ट लिया, लेकिन फीस्ट इतना अच्छा था, कभी कभी कुछ लोग स्वीट राइस 3-4 ग्लास पी लेते हैं। अच्छा थोड़ा ये थोड़ा भी ज्यादा पी लो क्या होता है, अगले दिन पेट में गड़बड़ हो जाता है। ये भी शर्त है, शर्त मतलब जितना भी स्वादिष्ट हो जितना खाना उतना ही खाना चाहिए। ये गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन ज्यादा डाल दिया बस। तो हम देखते हैं कि इस शरीर रूपी मशीन जो है इसमें इतने पाबंदियां हैं, हम मनमाने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कभी कभी खिचड़ी बनाते हैं, इतना स्वादिष्ट है खिचड़ी, तो डालते रहो पेट भर गया, लेकिन जिहवा बोलते क्या वो थोड़ा चाहिए, इतना स्वादिष्ट है थोड़ा ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा डालने के लिए जाओ पेट चिल्लाएगा, आए अभी भर गया मैं बस। लेकिन जिहवा बोलता है थोड़ा और थोड़ा बोलता है वो जिहवा, इतना स्वादिष्ट है थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं ऐसे। तो जिहवा और पेट के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, इसको कंडीशन बोलते हैं। तो भौतिक शरीर का मतलब है कंडीशन। जैसे हर एक हमारे शरीर के अवयव के लिए एक डॉक्टर है। अभी दांत को देखने वाला डॉक्टर का नाम क्या है, डेंटिस्ट बोलते हैं ना। अभी आंख को देखने वाला ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ब्रेन को देखने वाला न्यूरोलॉजिस्ट, हार्ट को देखने वाला कार्डियोलॉजिस्ट है, और आईज नोज थ्रोट चेक करने वाला ईएनटी स्पेशलिस्ट है ना। स्किन डिजीज को देखने वाला कौन, डर्मेटोलॉजिस्ट। किडनी को देखने वाला किडनी स्पेशलिस्ट है, और इस तरह है अलग अलग। अभी कोई अबॉर्शन करते हैं बच्चे, इसके लिए उनको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट है, बोलते हैं इसे। अगर कोई फ्लैश को मांस को काट कर दूसरे सर्जियन बोलते हैं उनको। इसका मतलब क्या है, आपके शरीर के हर एक अवयव के लिए एक एक डॉक्टर है। इसका मतलब क्या है, शरीर को एक व्याधि मंदिर कहा गया है। क्या मंदिर है, व्याधियों का मंदिर। इसलिए इधर से लेकर नीचे तक हर एक अवयव में व्याधि आ सकता है। तो इस तरह हजारों व्याधियां हैं शरीर में, एक व्याधि भी आ गया। अभी आप किसी को भी पूछिए, किसी को इसका म्यूकस का प्रॉब्लम है, किसी को पेट का प्रॉब्लम है, किसी को घुटनी में दर्द होता है उसका प्रॉब्लम है, वात हो पित्त हो कफ हो कोई भी हो, लेकिन हर एक व्यक्ति बोलेगा कि हम सबको मालूम है हमारे शरीर में क्या समस्या है, हमको मालूम है। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कमजोरी है, समस्या का हमें सामना करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी को म्यूकस हो गया, आपको मालूम है साइनस जब होता है इतना तकलीफ होता है, पूरा नोज नाक ब्लॉक हो जाता है, तो आप कुछ वॉश बेसिन में जाओ हाँ करके करो, कुछ निकलता नहीं, ठीक है वापस आकर बैठो पढ़ने के लिए, कुड़ो कुड़ ऐसा आता है जाता है, आपने देखा है नाक से बाहर आता है बाहर। तो आप नहीं चाहते हो, लेकिन वॉश बेसिन में जाकर करो, कुछ नहीं आएगा वो, देखा आपने। तो ये शरीर इस तरह हमें तकलीफ देता है, समझे ना, असन्नति क्लेश आश देह ऐसे बोलते हैं। ये शरीर ऐसे बनाया है कि हर एक अवयव हमें अलग अलग तकलीफ देने की क्षमता है, हर एक अवयव में आप देख सकते हैं। तो ये भी प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि इस तरह का कंडीशन क्यों रखा है भगवान ने, इसका कारण क्या है। सर्वप्रथम ये बात समझा गया है शास्त्र में कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है, ये कपड़े के बराबर है। जैसे मार्केट से कुछ गुलाब जामुन लेके आते हैं एक कैरी बैग में, तो कैरी बैग से जब गुलाब जामुन निकालकर प्लेट में रखते हैं तो कैरी बैग किधर जाता है, तो डस्टबिन में डाल देते हैं। ये सर जब आत्मा निकलता है शरीर से, आत्मा को शरीर को क्या करते हैं, आग में दे देते हैं। यावत् पवनो निवसति गेहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायु देहापाये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदं भज मूढ़मते। इस श्लोक में बताया गया है यावत पवनो निवसति देहे, जब तक प्राण रहता है शरीर में तब तक लोग आकर हमारे कुशल पूछते हैं आप कैसे हैं, ठीक है क्या, ठीक हो गया क्या ऐसे। लेकिन जब ये प्राण निकल जाता है बीवी भी डरती है पति के शरीर से, सोचती कि भूत है प्रेत है, पास में भी नहीं आ पाएगी। उसी शरीर को जिससे आलिंगन किए उन्होंने, अभी बाद में निकट आने के लिए भी डर होगी उसको। ये शरीर का बुरा हाल है, ये मृत शरीर है, नश्वर शरीर है, इस तरह के बताते हैं। इसलिए आत्मा जो है, जैसे मैंने बोला शुद्ध है, अमर है, अजर है, लेकिन उस आत्मा जब इस शरीर में बंधा जाता है तभी इस तरह के शर्त आ जाते हैं, पाबंदियां आ जाते हैं। लेकिन ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर क्यों दिया गया है हमें, कारण क्या है? जैसे अगर कोई व्यक्ति चोरी की है, उसको जेल में जब डालते हैं पहला चीज उनको एक स्पेशल कपड़े देते हैं, चेक्स का चेक्ड शर्ट देते हैं, आपने देखा है कैदी लोग पहनते हैं इस तरह। ये भौतिक शरीर भी कैदियों के कपड़े के बराबर है, ऐसे ही है। और जेल के अंदर खाना पीने की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था सब किया जाता है। इस दुनिया में भी भगवान ने खाने पीने की व्यवस्था की है कि नहीं है? इधर भी धान्य है, फल है, पानी है, सूर्य की रोशनी भी है, सूर्य की गर्मी भी है, सब कुछ प्राप्त होता है हमें। जिस तरह जेल खाने में सब दिया जाता है, देखिए जेल खाने में और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बड़ा फर्क है। किसी को मालूम है कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या है? एनीबडी नोस? हिटलर के समय एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप का मतलब है उधर लो अगर कोई जूश जन्म हुआ है उनको, तो हिटलर ने उनको क्या करता था, सब जूश उन्होंने 10 मिलियन जूस को लाकर गैस चैम्बर के अंदर डालकर उनको मारा, गैस डालकर ऐसे। उनका एक ही पाप है क्या है, क्योंकि उन्होंने जू के कैस्ट में उन्होंने जन्म लिए, बस उनको बचने की कुछ भी संभावना नहीं है। था ऐसे लोगों को गैस चैम्बर में डालकर वो मारता था, नहीं तो मशीन में गिलेटिन में मारते थे ऐसे उन दिनों में, तो अनेक लोग बचने के लिए भागते थे ऐसे। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप का मतलब है जिस स्थान में लोगों को अपने ही विष्ठा मूत्र को खाने के लिए दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं दिया जाता है, पानी नहीं, खाना नहीं, या तो मर जाओ नहीं तो गैस चैम्बर के अंदर डालकर मारेंगे, इसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप बोलते हैं। बहुत बड़ा डेंजर है वो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कैंप का एक ही लक्ष्य है, वो आदमी को धीरे 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 मार डालना पूरा, दूसरा कुछ लक्ष्य नहीं है। लेकिन जेल का लक्ष्य दूसरा है। जेल का लक्ष्य क्या है, कोई बता सकते हैं? जेल का क्या लक्ष्य है? रिफॉर्मेशन, हृदय बदलना, उसके लिए दंडी जाया जाता है जेल में। अगर कोई पिक पॉकेट है 3 महीने के लिए डाला गया जेल में, अगर वो आगे जाकर पिक पॉकेटिंग नहीं करेगा तो उसको छोड़ देंगे उसको, है कि नहीं? सुधारने के लिए मौका देते हैं, और सुधारते टाइम भी उनको भोजन, पानी, डॉक्टर ये सबके व्यवहार करते हैं, इसके लिए आयोजन करते हैं, करेक्ट है ना? तो अभी आप भौतिक दुनिया को देखिए, भगवान बोलते हैं दुखालय है, अशाश्वत है। ये क्या कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, ये जेल है? बोलिए, कितने लोग बोलते हैं कि ये जेल है भौतिक दुनिया? ठीक है, कितने लोग सोचते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप है? समझ गए ना आप, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में दुख देना ही लक्ष्य है, मारना ही लक्ष्य है, लेकिन सुधारना लक्ष्य नहीं है उधर। लेकिन भौतिक दुनिया भगवान ने क्यों बनाया? हमारे गलत एटीट्यूड को सुधारने के लिए इसलिए बनाया है। तो इस दुनिया में भी तो ये कंडीशन क्यों रखा गया है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बिना कंडीशन हम जिएंगे, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा हो, उसका माँ बाप स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन वो लिमिटेड स्वतंत्रता है, पूरा नहीं देते हैं। क्यों? अगर बच्चे को किचन में पूरा स्वतंत्रता दे दो, वो क्या करेगा, जाकर आग को छुएगा, नहीं तो चाकू को लेकर उसके साथ खेलेगा, उसका उंगली कट जाएगा उसका, है कि नहीं? नहीं तो कभी कभी बच्चे को छोड़ दो, वो जाकर किसी कुआं में गिर जाता है अंदर। तो बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है, थोड़ा ही दिया जाता है, जितना स्वतंत्रता को दुष्प्रयोग नहीं करेगा उतना ही दिया जाता है। तो जैसे एक गाय को अगर ये कंब में ऐसे आप बांध कर रखते हो, वो गाय क्या कर सकती है, वो उस कंब के घूम घूम कर उधर जितना भी घास फूस पड़ा है उतना खा सकती है वो। इस तरह जीवात्माओं को भी भगवान क्या क्या है, थोड़ा फ्रीडम दिया है। किसके अनुसार? हम जितना भगवान से हम अलाइन, अलाइन का मतलब क्या है, हम भगवान के विधि विधानों को जितना पालन करते हैं उतना स्वतंत्रता ज्यादा है, और जितना हम भगवान के विधि विधानों को तोड़ते हैं उतना शर्त बढ़ जाते हैं। समझे ना आपने? उदाहरण के लिए अगर कोई बी क्लास जेल में है, अगर एक सज्जन छोड़ा उसको क्या करेंगे, ए क्लास जेल में लेके जाएंगे उसको, बी क्लास से ए क्लास। इस तरह इधर के अच्छे लोगों को स्वर्ग लोक में लेके लेके जाते हैं। लेकिन अगर कोई चोर उधर जेल खाने के अंदर जाने के बाद भी लोगों का झगड़ा करता है, कुनी करता है, मारा मारी करता है, तो उसको सी क्लास जेल में भेज देंगे, हाथ पैर वगैरह बांध कर, है ना, उस दंड बढ़ाया जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन से जानवर का शरीर, पेड़ पौधों का शरीर मिलता है, जैसे नरक और मणिग्रीव उनको पेड़ का शरीर दिया गया ताकि वो गलत प्रयोग ना करे मनुष्य शरीर को, इसलिए पेड़ दिया गया उनको ऐसे। तो कंडीशन तब बढ़ता है जब कोई व्यक्ति विधि विधान को तोड़ता है। ऐसे उदाहरण के लिए अगर कोई माँ बाप हो, उनके बच्चे हो, माँ बाप रोज बच्चे को 5 रुपए देते हैं, बेटा जाओ पॉकेट मनी रख लो तुम्हारे लिए, लेके जाता है। तो कभी कभी बच्चा क्या करता है, उसका गलत प्रयोग करता है, सिगरेट पीता है, कुछ गलत काम के लिए यूज करता है, तो माँ बाप उसको कट कर देते हैं। और वो कट करने के बाद भी क्या करता है बच्चा, कभी कभी बीरो को खोलकर चोरी करके लेके जाता है पैसा, तो बीरो को भी लॉक कर देते हैं, बीरो को लॉक कर देते हैं, उसको कुछ नहीं देते हैं उसको। इस तरह भागवत के 4वें स्कंद में भूमि देवी बोलती है, क्योंकि इस दुनिया के सब जीव राशियां क्या करते हैं, अच्छी तरह धान्य को खाकर, फल फूल फल को खाकर मजबूत शरीर मिलने के बाद उसे इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए वो बोल रही है कि मैं इनको धान्य नहीं दूंगी, अंदर ही छुपाकर रखूंगी, जब ये विष्णु को अर्पण करेंगे तभी दूंगी मैं, तब तक नहीं दूंगी, ऐसे बोलती है भूमि देवी। इसलिए आज आधुनिक दुनिया में इंसान बहुत ओवर पॉपुलेशन, स्कार्सिटी ऑफ फूड, इन चीजों के बारे में बातें चल रहा है। कारण क्या है? जितना इंसान भगवान से दूर जाता है उतना वो सुख जाता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी लंदन में ऐसे पार्क में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये घास था जो पीला था, दूसरा घास था हरा भरा था। तो प्रभुपाद जी ने दोनों को दिखा, ये क्यों पीला है, ये क्यों हरा भरा है, कोई भक्त बोल नहीं पाए। तो प्रभुपाद बोले कि देखो ये हरा भरा जो है वो मूल से जुड़ा हुआ है, लेकिन पीला जो है वो मूल से कटा हुआ है, इसलिए पीला हो गया वो। इस तरह जो दोज हु आर कनेक्टेड टू गॉड विल फ्लरिश, दोज हु आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड विल परिश, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। जो भगवान से जुड़े हैं उनके लिए सब सुविधा मिलती है, भगवान प्रकृति द्वारा बारिश देते हैं, सूर्य, उन दिनों में बारिश होता था रात को होता था, सुबह उठकर देखो पानी पानी सब दिशा में होता है, लेकिन आजकल सुबह उठेंगे ऑफिस जाते समय पानी बरसता है थोड़ा बहुत, उसके बाद बंद हो जाता है। अब शाम को ऑफिस से रिटर्न होते समय वापिस बारिश होता है थोड़ा बहुत, और वो भी दिखावा करके चला जाता है, कुछ अच्छा बारिश होता नहीं है। क्योंकि जितना लोग भगवान के विधि विधानों के से दूर जाएंगे ना उतना दंड मिलता है प्रकृति के द्वारा। सो प्रभुपाद जी बोलते थे कि देखो ये जो कंडीशन है हमारे ऊपर, इस कंडीशन से हम ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कुछ भी कंडीशन नहीं है। अभी उदाहरण के लिए एक जरासंध था जो कृष्ण और बलराम को पीछे किया उसने, उनके पीछे भागा, और कृष्ण बलराम चढ़ गए एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर, वो बहुत मीलों की पहाड़ था, ऊंचा पहाड़, तो देख नहीं पाए, मिले नहीं वो कृष्ण बलराम, तो क्या किया इसने, सारे वो पहाड़ को आग लगाया चारों दिशाओं से, उसका नाम है प्रवर्षण नाम का एक पर्वत। तो कृष्ण बलराम ऊपर से कूद पड़े नीचे, और नीचे कूद कर ऐसे चलने लगे, उनको कुछ नहीं हुआ, उनके कुछ हड्डी नहीं टूट गया, उनको ऐसे ऑर्थोपेडिक सेक्शन में एडमिट नहीं किया किसी अस्पताल में। कोई बता सकते हैं कृष्ण बलराम इतने बड़ा कूद बाने के बाद लगभग 90 माइल्स उन्होंने कूदा ऊपर से, तो उनको क्यों कुछ दुर्घटना नहीं घटा, कारण क्या है कोई बता सकते हैं? फिजिकल पार्ट, हाँ करेक्ट. आई वॉन्ट द स्टूडेंट्स टू से, योर स्टूडेंट्स कैन आस्क देम, यू अंडरस्टूड, कैन आस्क. समझा आपने मेरा उदाहरण? कृष्ण बलराम कहने ऊपर से कूद पड़े, उनको कुछ नहीं हुआ उनके शरीर को, कारण क्या है? हाँ, उनका आध्यात्मिक शरीर है, चिन्मय शरीर है, समझे ना आपने? इसका मतलब है चिन्मय शरीर जब प्राप्त होगा उधर कुछ भी शर्त नहीं है. आप देखेंगे जैसे एक बार नारद मुनि के साथ मुलाकात हुआ हमारे रावण को, तो रावण ने पूछा, हे नारद जी आप कुछ राज विद्या, कुछ ब्रह्म विद्या आप सिखाते हो ऐसे मैंने सुना, मुझे भी सीखना है, मुझे क्यों नहीं सिखाते हो? नारद मुनि बोले कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए कुछ योग्यताएं हैं. तुरंत रावण कुपित हो गया, तलवार को निकाल दिया, आप नहीं सिखाओगे तो मार दूंगा आपको. इस तलवार को दिखाया, नारद मुनि बोले इसलिए मैं सिखाया नहीं तुमको. तो वो इतना बड़ा बेवकूफ था, वो तलवार लेकर नारद मुनि को काटने के लिए ऐसे तलवार को चलाया तो उनके शरीर के द्वारा तलवार जाकर निकला 3-4 बार ऐसे, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनको. कारण क्या है? उनका शरीर था चिन्मय शरीर, आध्यात्मिक शरीर है. इस तरह हरेक जीव को भी आध्यात्मिक शरीर है. नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः. ये कृष्ण बताते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आत्मा के, भगवद्गीता में बताते हैं. ये आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता आत्मा को. आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, अजर है, अमर है, उसका चिन्मय शरीर है. इस तरह का शरीर था नारद मुनि के पास और कृष्ण और बलराम के पास भी. इसलिए हम उसको सच्चित आनंद बोलते हैं, उसको सच्चित आनंद शरीर ऐसे. तो हम लोगों का भी सच्चित आनंद शरीर है, लेकिन अभी हम एक भौतिक पदार्थों से बनाया हुआ शरीर में हम फंस गए हैं अभी. ये जो भौतिक पदार्थों से बनाया हुआ शरीर है, और इसमें जितना तक हम रहते हैं इस भौतिक शरीर में, उतना तरह तरह के दर्दों को सामना करना पड़ता है भौतिक दुनिया में. जैसे मानो जरा सोचिए, अगर आप एक पार्क में जाते हो, एकदम सुंदर उधर कार्पेट ग्रास लगाया गया है, आपको अच्छा लगता है, निकट ही एक अच्छा तालाब है और पंछियां अच्छा कलरव कर रहे हैं और मंद हवा बह रही है. आप कुछ लोग साथ में जाते, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बोलते हो कि कितना सुखमय है, अच्छा वातावरण है. अचानक एक कांटा चुभ जाता है आपके पांव में, बोलते पूरा आपका शांति उड़ गया अभी. तो आप देखेंगे इस दुनिया में शांति के बीच बीच में कुछ समस्या भी आते रहते हैं इस दुनिया में. इसलिए यह दुनिया के सुख कैसे हैं, स्वीट राइस साथ साथ उसमें पत्थर भी आता है बीच में. स्वीट राइस खाते हो ऐसे पत्थर आ जाता है, तो उसको आप सोचते हो कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्वाद भी है, खाने की इच्छा होता है. ठीक है, वापस खाओ और एक बार पत्थर आ जाता है. तो आप में से कितने लोगों को स्वीट राइस चाहिए लेकिन उसमें पत्थर नहीं चाहिए? हाथ ऊपर करिए. ये आध्यात्मिक दुनिया है, आपको जाना पड़ेगा उधर. क्योंकि भौतिक दुनिया में उस तरह का सुख नहीं है. हर एक सुख के साथ क्या है, एक तकलीफ भी जुटा हुआ है. कोई सोचता है ये कार खरीद लेंगे ताकि कार हमारी सेवा करेगा, हमको लेके जाएगा इधर उधर, ठीक है. लेकिन कार करने के बाद कार टैक्स भरना होता है, पेट्रोल भरना होता है, कार टूट गया तो गैराज में लेके जाना होता है, रोज हॉस्पिटल लेकर उसको धोना पड़ता है, जैसे हम नहाते हैं उसको भी नहाना पड़ता है ना, तो उसको रखना है. तो इस तरह देख सकते हैं इस दुनिया में सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है. कोई भी व्यक्ति सुख को अकेले नहीं प्राप्त कर पाएगा इस दुनिया में. लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में आध्यात्मिक शरीर जो है उधर आनंद ही आनंद है उधर. वो असली क्या बोलते हैं, जैसे आप भारतवासी हैं, लेकिन भारतवासियों को अगर कोई देश के विरुद्ध कानून के विरुद्ध कुछ काम करेगा तो उसको जेल में डालते हैं, है कि नहीं। इस तरह भौतिक दुनिया को भी भगवान बताते हैं भगवद्गीता में, एक जेल खाने के बराबर है। जेल खाने के अंदर देखिए खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, लेकिन समस्या क्या है, हमें पत्थर तोड़ना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा जो नहीं हम चाहते। इसलिए आप देखेंगे हर एक व्यक्ति इस दुनिया में, आप किसी को भी पूछो, वो शांति से आराम से जीना चाहते हैं। ऐसे एक व्यक्ति, एक किसान, वो अपना एक बैलगाड़ी लेकर जा रहा था, टकड़क 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 जा रहा था, तो गांव के बाहर एक ऐसे बड़ा बरगद का पेड़ था, तो उसने सोचा कि अभी हम लंच लेंगे, अभी थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो आकर बैठा वो बरगद के पेड़ के नीचे, दूसरे बाजू में देखा एक साधु बैठे थे, साधु महात्मा वो जप कर रहे थे, हरे कृष्ण कर रहे थे ऐसे। तो उसने सोचा कि अभी तो साधु को भी कुछ देना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि अगर कोई साथ में है तो उनको बांट कर खाना चाहिए। तो पूछा साधु महात्मा को, आपको क्या चाहिए जी, आपको थोड़ा चाहिए, एक दो चपाती चाहिए? वो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्ही खुद खाओ। बोला ठीक है, वो खा रहा था वो। उसके बाद साधु को देखकर पूछा, अरे आप कुछ काम धंधा तो करो, हाथ पैर दिया भगवान ने, तुम तो इधर बैठकर ऐसे नाम जप रहे हो, ऐसे बोला उसने। तो वो साधु जी ने पूछा उनको, अच्छा तुम्हारा काम क्या है? वो बोला कि अभी देख नहीं रहे हो, देखो मेरे पास बैलगाड़ी है, मैं लेकर जा रहा हूं माल उधर दूसरे गांव में डालने के लिए। और क्या करोगे? बोला, वो बोला कि मैं वापस जाकर और माल लेकर आऊंगा, दिन में दो बार होता है हमारा। ठीक है, और इस तरह कब तक करोगे? बोला कि मेरा दो बच्चे हैं तो उनको बड़ा करूंगा, और इस बिजनेस को करने के बाद हम एक ट्रैक्टर खरीद लेंगे, ट्रैक्टर के साथ भी एक ट्रॉली होगा। तो जो दो बार लेके जाना पड़ता है, ऐसे चार बार एक ही दिन में ट्रैक्टर लेकर आएगा, वापस लौट जाएगा, ऐसे बोला उसने। ऐसा है क्या? ठीक है। बोला कि मेरे दोनों बेटों को एक एक ट्रैक्टर दे दूंगा। और उसके बाद क्या करोगे? बोला दोनों को शादी करवा दूंगा। उसके बाद क्या करोगे? उनको दोनों को जमीन बांट दूंगा। उसके बाद तुम क्या करोगे? हो मैं तो आराम करूंगा, ऐसे बोला वो शांति से। तो साधु महात्मा बोले मैं वही कर रहा हूं अभी। इस दुनिया में सब लोग क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, शांति से जियो ऐसे। लेकिन जब तक हमारे भगवान के विरुद्ध कुछ करने की इच्छा है तो सब जीव इधर उधर भटकते हैं, भोग की पीछे पड़े हैं सब जीव, भोग वृत्ति के साथ। लेकिन जब हम सेवा वृत्ति में जुड़ेंगे तभी हमें शांति है, सुख है, आनंद है। लेकिन इस तरह भोग के कारण ही हमें ये पाबंदियां डाला गया है। पहला चीज है कंडीशन। अभी देखिए यह दुनिया में कोई भी, इसको बोलते हैं वूम्ब टू टूम्ब बोलते हैं, टूम्ब का मतलब है मृत्यु के बाद उसको श्मशान घाट में जाना, वो टूम्ब है। वूम्ब का मतलब है मां के गर्भ में, इसके बीच में तकलीफ ही तकलीफ है इस दुनिया में। आप देख सकते हो जैसे एक पांच उम्र का बच्चा है, वो मां के गोद में रहना चाहता है लेकिन उसको स्कूल जाना पड़ता है उसको। जैसे उस जमाने में प्री नर्सरी नर्सरी वगैरह नहीं था, लेकिन आजकल अभी प्री नर्सरी भी आ गया, आजकल अढ़ाई साल में ही स्कूल में भेज देते हैं आजकल। उन दिनों में जब हम छोटे बच्चे थे, पांच उम्र में एक दिन हमारी माता ने एक अलग ही ड्रेस पहना है हमको, एक यूनिफॉर्म। मैंने पूछा ये क्या है आज नया ड्रेस, और वो सॉक्स पहना रही थी और शू पहना रही थी मुझे। मैंने बोला ये क्या है नया आज, वो बोली समझ जाओगे तुम आओ अभी। तो बाहर बाहर लेके गई, वो बड़ा बस आकर खड़ा हो गया, ये काकी काकी है, कंडक्टर दरवाजे को खोला, माँ ने हमको सौंप दिया उसके हाथ में। मैं चिल्ला रहा था हा वो करके, वो तो दरवाजा बंद कर दिया, आवाज मत करो बैठ जाओ अभी। मैं खिड़की से देख रहा था, माँ माँ, वो तो टाटा बोलकर हंसते हुए चले गए। तो दिन भर हम रो रहे थे स्कूल में, और शाम को जब वही आदमी बस में लौटाया हमको, हमने सोचा कि जीवन में एक ही दिन करना पड़ता है। सोचा था हमने, आने के बाद मां खड़ी थी उधर बस स्टॉप में, लेके गई। मैंने बोला कि आप क्या कर दिया आपने, किसी और को सौंपा दिया मुझे आपने। तो अगले दिन जब यूनिफॉर्म पहनाया मुझे, समझ गया कि आज भी जाना पड़ेगा। देखिए बच्चा जो है कभी मां से बिछड़ना नहीं चाहता है, लेकिन बिछड़कर स्कूल जाना पड़ता है उसको। और ऐसे बच्चा जब बड़ा होता जाता है, पांचवी कक्षा में आ गया, नौवीं कक्षा में आ गया, तो माँ बाप पीछे पड़े हैं, ए तुमको आईआईटी में ज्वाइन करना है, तुमको एनआईटी में ज्वाइन करना है, नहीं तो कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करना है, कुछ भी हो, अगर उसको इंजीनियरिंग कॉलेज मिला ही नहीं, नाकानंदा मुक्कानंदा सम कॉलेज में कैपिटेशन फी देकर उनको एडमिट करते हैं, 2 लाख 5 लाख देकर कुछ ना कुछ करके बच्चों को एडमिट करते हैं। तो ये दसवीं कक्षा में बड़ा टेंशन होता है बच्चे को, क्योंकि कुछ कुछ आजकल भारत में देखते हैं बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं ये स्टडी टेंशन के कारण। इसके बाद जब कॉलेज ज्वाइन करो उसके बाद नौकरी का बड़ा चक्कर है, आजकल इतने लोगों को डिग्री मिलता है लेकिन नौकरी नहीं मिलता है उसको। इस तरह माँ बाप को भी क्या होता है, अगर बच्चा बड़ा हो गया, अगर बेटा हो तो उनको डर है कि वो ड्रग एडिक्ट ना बन जाए, गलत दिशा में ना चले जाए, बार बार देखते हैं, अगर बेटी हो तो किसी लड़के के साथ भाग ना जाए, इस तरह डर होता है उनको। जब तक शादी करके सेटल करो तब तक बड़ा टेंशन है, हमेशा देखते रहते हैं किधर जाती है किधर, आजकल फेसबुक आ गया, आजकल मोबाइल आ गया, स्त्रियां लड़का लड़की क्या क्या करते हैं माँ बाप को पता नहीं चलता है, तो उनके पीछे पड़ते हैं तो बड़ा टेंशन होता है। और उनका 50-60 के बाद उनके शरीर में तरह तरह के व्याधि आता है, उठेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, बैठेंगे तो उठ नहीं पाएंगे, घुटने में दर्द होता है। तो इस तरह है वोंट टोम क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विविध यातनाएं हैं शरीर में। तो पहला चीज हमारे जीवन में ये पूछना चाहिए कि अगर मैं इतने तकलीफ झेल रहा हूं, ये तकलीफ देने वाला कौन है, ये पूछना चाहिए। देखिए अगर आप में से किसी को इधर बुलाऊंगा मैं, आपके आंख बंद करके एक चिमटी देता हूं आपको, तो चिमटी देने से आपको पता चलेगा कि कोई हमें दर्द दे रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि कौन दर्द दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है कोई, चिमटी अपने आप दर्द होता नहीं, कोई देने वाला है कोई। तो इधर ही वृंदावन में जब प्रभुपाद जी ठहरे थे तो एक दिन कुछ पंछियां आई थी, देखिए कुछ कुछ घरों में बाहर ऐसे ये होता है एक ट्रायंगुलर होल होता है जिसमें दिया रखते हैं, देखा आपने, तो उसके अंदर कुछ घोंसला बनाने के लिए कुछ पंछियां ट्राई कर रही थी। तो प्रभुपाद जी मसाज ले रहे थे तो उनके सर्वेंट देख रहा था, प्रभुपाद ने बोला कि ये पंछियां जो है मैं जब सुबह डिक्टेशन करता हूं ये भागवतम का परपोट लिखता हूं ये पंछियां बहुत आवाज करते हैं, चो 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 आवाज करते रहते हैं, मुझे डिस्टर्बेंस होता है, प्रभुपाद ने बोला। तो वो भक्त ने सोचा कि अगर ये घोषणा बनाएंगे तो इधर ही आकर बैठ जाएंगे, दिन भर डिस्टर्ब करेंगे प्रभुपाद जी को, इसलिए उन्होंने घोषणा बनाना नहीं दिया, उनको निकाल दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, घास फूस जो भी डाला था उन्होंने। कुछ समय के बाद वो जब मसाज कर रहे थे देखा वापिस वो घास फूस लाकर रखा था, वो घोसला बनाने लगा। तो ये भक्त ने क्या किया, एक पेपर को लेकर ऐसे बाल जैसे बनाकर अंदर घुसा दिया उसको। तो कुछ समय के बाद वो चिड़िया आया तो वो पेपर बाल को निकाल दिया उसने और वापस बनाने के लिए ट्राई किया घोसला बनाने के लिए। तो अभी हमारे प्रभुपाद जी सर्वर ने देखा क्या किया उन्होंने, एक बैठा का ये होता है ना हार्ड बोर्ड, वो हार्ड बोर्ड को एक कार्ड से बनाकर घुसा दिया उसको ताकि वो निकाल ना पाए। तो ये चिड़िया उधर जाकर अपने दीदी को भी लेके आया, वो दोनों आ गया, अभी दोनों वो होल के पास में होकर चो 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 करते ऐसे ऐसे वो चोंच से निकालने के लिए ट्राई कर रहे थे। वो आधा घंटा ट्राई किया कर नहीं पाए, वो जो छोड़कर चले गए दोनों। उसके बाद प्रभुपाद जी उसको देख रहे थे और हंस पड़े प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने बोला देखो ये दो चिड़िया जो बैठे थे कितने बार ये घोसला बनाने के लिए ट्राई किया इन्होंने और कितने बार इनको रोका गया लेकिन ये अंधे हैं, ये देख नहीं पाते हैं कि उनको रोकने वाला सामने ही खड़ा है, वो देख नहीं पाते हैं। इस तरह इस दुनिया में भी अनेक लोग भौतिक प्राप्तियों को हासिल करने के लिए कितना कठोर परिश्रम करते हैं, बार बार माया देवी उनके साथ योजनाओं को उड़ा देती है। जैसे अगर कोई समुद्र के किनारे में अगर कोई एक बहुत बड़ा कैसल बनाएगा, बड़ा महल बनाएगा ये रेत में मिट्टी में बनाएगा तो एक बहुत बड़ा लहर आएगा फिनिश खत्म हो जाएगा वो। इसी तरह हम भी जीवन में बड़े बड़े चीज भौतिक चीज करते हैं लेकिन मृत्यु के समय क्या होता है, सब चीज निकाला जाता है खत्म हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि इस तरह दर्द देने वाली कौन है? माया देवी है, दुर्गा है। दुर्गा के हाथ में आप देखेंगे त्रिशूल, अध्यात्मिक है, अधिभौतिक है, अधिदैविक है, त्रिविध ताप उसे सता रही है। और क्यों वो जेल की पर है दुर्गा देवी, वो क्यों दुख दे रही है, इसका भी कारण बताया शास्त्र में। जिस तरह अगर कोई लड़का अपने पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर खेल कूद में मजे में बिताता है, तो पिताजी सोचते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए। खुद ही उनको लाफा देना, पिटाई करने में आनंद नहीं होता है पिताजी को, एक ट्यूशन टीचर रख देते हैं वो, ये ट्यूशन टीचर इसको लाइन पे लेके आओ, इसको सुधारो इसको। तो ट्यूशन टीचर जब आती है, लड़का बोलता है ए इधर लेके जाओ 10 रुपया, मुझे कॉमिक्स लेके आना, और लाफा देती है उसको, कॉमिक्स चाहिए तुमको, बैठकर पढ़ो अभी, पहले परीक्षा होने वाला है। तो वो सोचता है कि ये क्या, ये कौन नौकरानी आकर मुझे लाफा देती है। बोलता है मैं पिताजी को कंप्लेन करूंगा। वो बोलते उन्होंने रखा मुझे तुमको सुधारने के लिए। इस तरह है दुर्गा देवी कौन है, कृष्ण के बहन है, ये महामाया बोलते हैं। और उनको क्यों भगवान ने रखा है, हमको सुधारने के लिए। लेकिन जो सुधर गए उनको जेल का दरवाजा खोलकर वो छोड़ देगी भगवत धाम जाने के लिए, जो सुधर गए। लेकिन जो सुधरे नहीं उनको सुधारने के लिए अलग अलग योजना बनाएगी वो, इस तरह। इसलिए इतना कंडीशन डालती है, कभी कभी बहुत गर्मी, कभी कभी बहुत ठंडी, कभी कभी अकाल, इस तरह ये सब पैदा करती है। क्योंकि वो समझना चाहती है हमको ये दुनिया शाश्वत दुनिया नहीं है, इसको छोड़कर हमें भगवत धाम लौट चलना है, वो समझाने के लिए इस तरह की तकलीफों को वो देती है। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं इतना तकलीफों को देखने के बाद भी वो एडजस्ट करके वो इसी दुनिया में रहने की इच्छा करते हैं लोग। तो ये पहला चीज, ये कंडीशन बोला मैंने, इस तरह की कंडीशन है, व्याधि के बारे में बोला, समस्याओं के बारे में बोला। पहला स्टेप है आध्यात्मिक जीवन में ये बात समझना कि मुझे इस दुनिया में स्वतंत्रता नहीं है, इधर इस दुनिया में दुख है, इस दुख का मूल कारण क्या है मैं ढूंढना चाहता हूं। उदाहरण के लिए अगर कोई चूहा मर गया किसी कमरे में, उधर बीरो पड़ा है, टेबल पड़ा है, चार पड़ा है, कहीं तो नीचे है, मर गया हो, एकदम दुर्गंध आता है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ ओडोनिल ला सकते हो, ओडोनिल लगा दिया तो चला गया अभी दुर्गंध, लेकिन ओडोनिल जब खत्म हो जाएगा वापस दुर्गंध आएगा, है कि नहीं। इस तरह इस दुनिया में भी आधुनिक साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, समस्याओं को ठीक करने के लिए अलग अलग उपाय ढूंढते हैं। आप बोलो कि अरे हमारा बाल सफेद हो गया, ठीक है हेयर डाई बनाते हैं, अगर किसी को रिंकल्स आ गया बोलते हैं कि फेस लिफ्ट बनाएंगे, अगर ये चाहिए तो अलग अलग उपाय भी जो ढूंढ निकालते हैं, वो सब स्टॉप गैप है। कोई भी बुढ़ापा को रोक नहीं सकता, मृत्यु को रोक नहीं सकता, लेकिन क्या करना चाहिए, हमें ढूंढ निकालना चाहिए कि किधर है वो चूहा। अगर चूहा को निकालेंगे बाहर तो उसको दूर फेंक देंगे, उसके साथ दुर्गंध भी निकल जाएगा। इस तरह वैदिक संस्कृति बोलते हैं कि हमें ये दुख का मूल कारण ढूंढ निकालना आवश्यक है। जैसे अगर आप एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ, आपको इधर गर्दन में दर्द है वो कुछ कॉम्बिफ्लाम है तो ब्रूफेन देंगे आपको, पेट में दर्द है वही दवाई, कहीं भी शरीर में दर्द हो एक ही दवाई उनके पास, पेन किलर। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपको पेट में प्रॉब्लम है तो पहला चीज पूछेंगे क्या खाया तुमने, है कि नहीं, वो मूल कारण में जाते हैं। इस तरह हमारे दुखों का मूल कारण है हम भगवान से बहिर्मुख होकर खुद की भोग में लगना चाहते हैं किसी भी पाबंदी के बिना। ये किसके बराबर है, एक छोटा बच्चा बोलता है माता पिता को आप दोनों मेरे हाथ छोड़ दो, मैं सड़क के बीच में भागूंगा, लारी आए नहीं तो हाथी भी आए मुझे डर नहीं, मैं अकेले रहूंगा, आप मेरे साथ मेरे पीछे मत पड़ो। अगर कोई बच्चा बोलता है क्या माँ बाप मानेंगे, माँ बाप बोलेंगे अरे मूर्ख तुम इस तरह सड़क के बीच में जाओगे तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो पकड़ कर रखेंगे वो। इस तरह ये सब जीव इच्छा करते हैं कि एक विद्यार्थी ने पूछा मुझे प्रभुजी भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों सृष्टि नहीं किया जिसमें दुखी नहीं है, तो मैंने बोला वो दुनिया है उधर, नहीं नहीं उधर भगवान भी है ना, वो प्रॉब्लम है मेरा। वो बोले भगवान नहीं रहना चाहिए लेकिन मैं भोग करना चाहिए सब सुखों को लेकर। मैंने बोला ये रावण का मेंटालिटी है, रावण को क्या चाहिए था, किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड। भगवान वो सीता को उठाकर लेके आया था वो भोग करने के लिए, लेकिन राम नहीं चाहिए उनको। कुछ कुछ लोग उनके दुकान में जाओ, वो लक्ष्मी का फोटो है, सोने का सिक्का गिर रहा है हाथ से, तो उनको पूछो नहीं नारायण किधर है, नहीं नहीं नारायण नहीं चाहिए हमको, सिर्फ लक्ष्मी चाहिए हमको। ऐसे अरे लक्ष्मी और नारायण को साथ में पूजना चाहिए, साथ में पूजा करनी चाहिए दोनों का। तो रावण को कौन चाहिए था, सीता चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, मैंने बोला ये मिनी रावण का कॉन्शियसनेस है। देखो ये आप देखेंगे, लक्ष्मण सेवा कर रहे थे सीताराम को, हनुमान सेवा कर रहे थे, भरत सेवा कर रहे थे, विभीषण ने भी सेवा की उनकी, जटायु ने सेवा की, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो सेवा नहीं करना चाहा, कौन है वो, रावण। ये दुनिया में भटकने वाले सब जीव इसलिए दुखों यात्राओं को सहन करना पड़ता है क्योंकि वो भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं और होकर अपने ही भोग में डूबे रहना चाहते हैं वो। तो पहला सी कंडीशन। दूसरा सी है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है, कंडीशनिंग का मतलब है आदतें। जैसे कुछ कुछ छोटे बुरे आदतें होते हैं, कुछ कुछ लोग कभी कभी दिन में भी दो घंटा सो जाते हैं, दो तीन घंटा सो जाते हैं, वो बुरा आदत है। कोई कोई नाखून को ऐसे दांत से काटते हैं, ये बुरा आदत है। कुछ कुछ लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं ऐसे, तो ये छोटा छोटा बुरा आदत हो सकता है। लेकिन ये आदत का, आदत से क्या होता है, आदत पड़ जाता है। जैसे एक विद्यार्थी ने बोला हमको, पबजी हम हर दिन दोपहर को दो घंटा सो जाते हैं, बोला उन्होंने। मैंने बोला क्यों सोते हो, क्या किया जाए प्रभु जी, फैन हमको दबा कर रखता है नीचे, हम उठ नहीं पाते हैं। तो मैंने उनको पूछा फैन कौन ऑन किया, मैंने ही ऑन किया बोलता हूं। अरे तुमने फैन ऑन किया, फैन तुमको दबाकर सुलाता है, तो ऑन मत करो। वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं ऑन कर देता हूं, सो जाता हूं हर दिन, ये बुरा आदत है। तो ये छोटे छोटे बुरे आदतें होता है, लेकिन कुछ बुरे आदतें हैं जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, ये और भी बड़ा बुरा आदत है। क्योंकि आदतों को छुटवाना बहुत कठिन है, अगर एक बार आ गया ये बुरे आदत, और अवैध स्त्री संग करना सबसे बड़ा बुरा आदत माना जाता है, अवैध संग की इच्छा करना। जैसे पुणे में एक बहुत बड़ा करोड़पति है, तो वो जॉगिंग के लिए भागता था रोज सुबह, तो एक स्त्री मिल गई जो 20-22 साल की थी, एक खूबसूरत स्त्री, वो भी जॉगिंग के लिए जाते थे और दोनों जॉगिंग पार्टनर बन गए। तो ये 64 उम्र है इसका, 64 उम्र है इसका, और उसका उम्र कितना है, 22 उम्र है। तो दोनों भागते थे जैसे पिता बेटी की जैसे उम्र है उनका। तो एक दिन वो ऐसे ही पार्क बेंच में बैठे थे, तो वो स्त्री बोले उनको, आपको देखते समय कुछ हिंदी एक्टर का याद आ रहा है हमें, ऐसे बोली वो। ऐसा है क्या बोला, तो वो धीरे धीरे धोखा देकर ये स्त्री, वो ये तो अकेली स्त्री थी, अपने घर में लेके गई, तो लाखों लाखों रुपया उनसे लूटने लगी, और बाद में करोड़ों रुपया उनसे लूटने लगी। तो ये आदमी जो है, ये तो सही कथा मैं बोल रहा हूं आपको, सत्य कथा है। ये आदमी की एक बड़ी बेटी है, बड़ी बेटा भी है, और दोनों का उम्र है 20 से भी ज्यादा। तो जब बच्चों को पता चला, चिल्लाने लगे, पिताजी आप क्या बेवकूफ बन गए अभी, हा? वो तो स्त्री आपकी बेटी जैसी है, उसके साथ आप रोमांटिक, रोमांस मालूम है आपको, हा? क्या बोलते हैं रोमांस, मौज मस्ती करते हो आप इस वायस में, हा? और उसकी बीबी रो रही है, और उसके जो बिजनेस पार्टनर्स वगैरह वो लोग हैं, वो लोग ने बोले ए मूर्ख छोड़ दो इसको, वो बोलता है क्या करो, वो बहुत पसंद करती है हमको, उसको पसंद नहीं कर रही है, उसके पॉकेट को पसंद करती है वो। धीरे धीरे निकाला लाखों लाख रुपया, करोड़ करोड़ रुपया, उसके बाद एक दिन वो छोड़कर चले गई, भाग गई वो पैसा सब लेकर ऐसे। तो क्यों बोला हमने, अवैध संघ से अनेक दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, अवैध स्त्री संघ से। तो इस तरह ये इंसान जो आदमी का जो कहानी बोला मैंने, इसका पूरा मान सम्मान चला गया स्थिति में, लोग लो उसको देखते ही थूकते हैं, दिखार दिखारते हैं ऐसे। तो तो एक इंसान जो चरित्रवान इंसान है वो स्त्री के सहवास से उसका चरित्र पूरा गड़बड़ी आ जाता है उसमें। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि भगवान कृष्ण बताते हैं शादी करने में कुछ मना नहीं है, लेकिन शादी करके पति पत्नी एक धर्मपरायण होकर उनका जीवन जीना चाहिए धर्म के अनुसार। ऐसा नहीं कि अपने भी बीबी को छोड़कर किसी बीबी के पीछे किसी और स्त्री के पीछे भागना, ये मना किया है शास्त्र में। तो सब दुर्गुण आ जाते हैं यावेद संघ से। हम जब गए थे तिरुपति, उधर एक अच्छा सत्य कथा सुनने को मिला हमें। तो तिरुपति हिल्स जो होते हैं ना, अनेक लोग बालाजी को देखने के लिए जाते हैं, वो सारे पहाड़ में लगभग हजारों से भी ज्यादा तीर्थ स्थान है उधर, अनेक कथाएं हुई हैं उधर। तो हम एक दिन गए थे ऐसे, तो एक भक्त ने बोला मुझे इस जंगल के पास एक गांव है जिसमें एक माधव दास करके एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार में कंदन में जन्मा हुआ लड़का था, उधर रहता था वो। तो एक दिन वो फूल तोड़कर लाने के लिए गया वो जंगल में। उस समय उसको देखने को मिला एक तरुणी स्त्री जिसका नाम था कुंतला। तो ये लड़का उसको देखकर ही अचानक उसको आज लगे, इतना खूबसूरत थी, इसकी आंखें काले काले चमक रहे हैं, उसका चमड़ा भी काला ही था लेकिन वो बहुत सुंदर ही थी। तो ये उसके निकट गया, पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, बोला कि कुंतला। वो पूछा उसको तुम्हारी शादी हुआ क्या, वो बोली नहीं। वो बोला कि मुझे शादी करोगे क्या, तो वो बोली ऐसे मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं तो मेरे माँ बाप जो बोलेंगे वही करूंगी मैं, लेकिन तुम तो ब्राह्मण कंदार में जन्मे हो और मैं तो ट्राइबल मालूम आपको, आदिवासी, उनकी कंदार में जन्म लिया हूं मैंने, हमारा मैच कभी होगा ही नहीं है। हम लोग आकर आप लोग जैसे घर में हम काम करते हैं धंधा करते हैं, तुम मुझे जैसे कैसे शादी कर पाओगे। वो बोला नहीं नहीं नहीं, तुम तुम्हारे माँ बाप को पूछ कर आओ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं तुमसे शादी करने के लिए, ऐसे ब्राह्मण लड़के ने बोला। तो अगले दिन वापस लौटी तो ये उसी जंगल में गया था, पूछा उसको, वो बोले कि देखो मेरे माँ बाप ने बोला कि अगर ये लड़का तुमसे शादी करना चाहता है तो हमारे समाज में आकर रहना चाहिए उसको, हम मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, हम सुअर भी खाते हैं, वो भी ये सब खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हमारे हमारे जैसे जीने के लिए तैयार है तो तुम शादी कर सकते हो। तो ऐसे बोली वो। तो लड़का माधवदास बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं करूंगा ये सब तुमको प्राप्त करने के लिए। तो अपने घर में वापस लौटा, घर लौटा, बोला अपने माँ बाप को मैं अभी जा रहा हूं उधर शादी करके, मैं ट्राइबल लोगों के एरिया में रहने वाला हूँ। माता पिता फूट फूट कर रोने लगे वो, अरे तुम्हारा इतना ऊंचा जन्म हुआ है अच्छे परिवार में और तुम इस तरह इसको छोड़कर उधर जाकर रहने की इच्छा करते हो, कितना बड़ा मूर्खता है, तुम पथभ्रष्ट मत हो जाओ, इस दुनिया में क्या है इस तरह की स्त्री पुरुष के आकर्षण तो आते हैं जाते हैं, बूढ़े होने के बाद क्या आकर्षण टिकेगा, ये तो शतसंधि जर्जरम, ये शरीर जो है ये नष्ट होने वाला चीज है। माँ बाप की अच्छे उपदेश उसके कान में घुसा ही नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कामांध हो जाता है ना उसको समझाना बहुत कठिन है, इसलिए हम अंधे होना ही नहीं चाहिए, अंधा होने के पहले ही सुन लेना चाहिए सब अच्छे विषयों को है? तो वो समझ नहीं पाया, वो छोड़कर चला गया। तो शादी हो गया उनका, ट्राइबल लोगों के बीच में रहा वो, लेकिन एक महीने में वो कुंतला एक दिन जंगल में गई थी, एक सर्प ने उनको डसा वो मर गई वो। तो ये माधवदास फूट फूट कर रोने लगा, बोला कि हे कुंतला तुम्हारे लिए मैंने शादी करके आया है इधर, इतने सुंदर तो तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, मेरे जान भी नहीं रख पाऊंगा, ऐसे रो रहा था। तो सब लोगों ने उनको शांत होना की। तो इतने में अचानक एक दिन उनको कुष्ठ रोग हो गया। ये कुष्ठ रोग जब हुआ, ट्राइबल लोग बोले कि देखो हमारे समाज में एक नियम है, जिनको कुष्ठ रोग है वो लोगों को शहर गांव के बाहर रखते हैं हम एक पेड़ के नीचे, लेकिन हम खाना पीने की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ तुम नहीं रह पाओगे क्योंकि व्याधि स्प्रेड हो जाएगा दूसरों को भी। तो वो लोगों ने उनको एक पेड़ के नीचे रख दिया गांव के बाहर। तो दूर से अपने पुराने गांव को देखा माँ बाप की और ये ट्राइबल के गांव को देखा, बोला कि अभी मैं ना घर का ना घाट का भी, इधर बीच में पड़ गया और कुष्ठ रोग है, ऐसे हाथ पैर सब मेल्ट हो रहे हैं ऐसे है मेरे, और नीचे वो लेटा हुआ था तो अलग अलग घाव थे उसके शरीर में, तो रो रहा था। और भगवान की स्मरण आई उनके उनको, मैं किधर था, मेरा जीवन कैसे था और कैसे बन गया, अभी इस तरह रो रहा था वो। उस समय एक दिन एक उच्च वृत्ति करने वाले लोगों का एक ग्रुप आया। उच्च वृत्ति आपको मालूम है, वो ग्रुप में आते हैं वैष्णव लोग, आते हैं कीर्तन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और जो लोग दान्य देते हैं उसको स्वीकारते हैं। और इस तरह वो लोग आ रहे थे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलिए गोविंद जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल राधा रमन हरि, गोविंद जय जय। Govinda Hari Govinda Venkata Ramana Govinda, Srinivasa Govinda Sri Venkatesa Govinda, ऐसे गाते हुए आप पहुंचे वो लोग। वेंकट का मतलब क्या है? वेंक का मतलब है दुख, कट का मतलब जो काटते हैं, वेंकट का मतलब है दुखों को काटने वाले भगवान, उनका वेंकट बोलते हैं। तो जब निकट आ पहुंचे, माधवदास ने उनको रोका और हाथ जोड़कर विनती किया, थोड़ा मेरा मेरी बात थोड़ा सुनिए। तो अपनी पूरी कथा बताई उनको, सब लोगों ने सुना और बोला कि ये मेरा बुरा हाल हो गया, अभी मैंने इतने पाप कर दिया, मेरे जीवन में माँ बाप को त्याग दिया और किसी ट्राइबल लोगों के साथ भटक गया मैं, अभी ये कुष्ठ रोग आया है, अभी मेरा भविष्य क्या है। तो वो लोग बोले, देखो तुम्हारा पांव तो सही है अभी तक, तो तुम उठो हमारे साथ आओ, हम बालाजी का दर्शन करेंगे, बालाजी से प्रार्थना करो। तो उठकर उनके साथ वो भी कीर्तन में भाग लेते हुए जा रहा था। लेकिन देखिए, आप तिरुपति जाएंगे, पहला पहाड़ आसान है, दूसरा पहाड़ थोड़ा बहुत स्टीप है, चढ़ना बहुत कठिन है, आजकल तो रोड वगैरह बन गया आजकल। तो वो चढ़ नहीं पाया, तो लोग बोले कि ठीक है तुम ना नहीं पाओगे तो हम आगे जाते हैं। लेकिन इसने विनती की उनसे, आप लोग जाइए भगवान से, मेरे प्रार्थना को उनको प्रस्तुत कीजिए, तो भगवान से माफी मांगना चाहता हूं, और आप जैसे भक्तों का संग हमें हमेशा प्राप्त हो, इस तरह बोलकर उनको वापस भेज दिया। वो लोग आगे गए तो कुछ ही क्षणों में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। देखिए कभी कभी चमत्कार लोगों के जीवन में होता है। अभी पुणे, हमारे पुणे में एक आदमी है, सच्चा सौदा बिजनेस का आदमी है, वो इधर आया था ब्रज में, कहीं तो किसी बाबा जी को मिलने के लिए वो परिवार वाले सब गए थे। उसका एक हाथ में पैरालिसिस था उसका पूरा, लेकिन वो बाबा जी ने बोला सब लोग हाथ खड़ा करो और राधे राधे बोलो बोला, तो ये भी हाथ ऊपर गया, सब ठीक हो गया उसका। अभी पुनः वापस लौटे के बाद वो 80,000 का मार्बल डोनेशन में दिया उसने, 80,000 नहीं 80 लाख, 80 लाख का मार्बल। वो बोला कि हम वृंदावन गए, इस तरह का चमत्कार हो गया हमारे जीवन में, कोई भी डॉक्टर हमको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन इस तरह का चमत्कार हो गया, राधा रानी की कृपा है, इसलिए आप राधा कृष्ण के मंदिर बना रहे हैं, ठीक लीजिए आप 80 लाख का ये मार्बल दे दिया उन्होंने इसे। तो इस तरह कभी कभी चमत्कार हो ही जाता है भगवान की कृपा से। तो माधवदास का भी चमत्कार हो गया, इसे अचानक ये सब लेप्रसी वगैरह ठीक हो गया उसका, ये कुष्ठ रोग तुरंत ऊपर भागने लगा सब भक्तों को मिलने के लिए। भगवान बालाजी दर्शन की, उन्हें दंडवत प्रणाम की, उसके बाद उसका जीवन सुधर गया उसका पूरा पूर्ण तरीके से। अब वापस लौट कर अपने माँ बाप से मिला। लेकिन ये कथा मैं क्यों बोला आपको, ये सत्य कथा है जो हुआ कुछ 200-300 साल के पहले हुआ है उधर। तो ये क्यों बोला मैंने आपको, इस तरह एक दूसरे को देखकर स्त्री पुरुष इस दुनिया में पथभ्रष्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं इस दुनिया में है। जब हम युवक अवस्था में हैं, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की इतना बड़ी बात चल रहा है सारे भारत में भी है, जिस तरह पाश्चात्य देश में होता है अभी भारत में भी आ गया ये सब चीज, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक का गलत आदत है। कारण क्या है, अगर दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करेंगे लेकिन माँ बाप मना करेंगे, अगर माँ बाप मना नहीं किया तो एक दादाजी दादी जी वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए बोलेंगे। इसलिए ये कंडीशनिंग का मतलब क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य इत्यादि, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। हम इन कंडीशनिंग का हम गुलाम बन जाते हैं, वासनाओं का गुलाम बन जाते हैं हम, इसलिए उसको कंडीशनिंग। तो इस दुनिया में यह भी बड़ा समस्या है, ये जो इस तरह के वासनाएं हैं, इस तरह के बुरे आदतें हैं, तो कभी कभी कुछ कुछ व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं, इतना उत्तेजित हो जाते हैं सब लोग डरते हैं उनसे, ऐसे ही पूछ लो। इस तरह काम क्रोध लोभ, लोभ के कारण लोग हमेशा अपेक्षा करते हैं कि इतना पाए इतना पाए, जलन होता है लेकिन अंत में जलन ही रह जाता है हृदय में, बस वो पदार्थ नहीं मिलता है, जलन ही रह जाता है इसे, तो इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। अभी समय हो गया, तीसरा है, सिर्फ मैं बोलकर मैं प्रवचन को विराम देंगे। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वो तीसरा है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है, इस दुनिया में सब लोगों के बीच में स्पर्धा है, बड़ा स्पर्धा है। आप देखेंगे विद्यार्थियों के बीच में स्पर्धा है अच्छा मार्क लाने के, बिजनेस लोगों के बीच में स्पर्धा है, अभी जानवरों पक्षियों के समाज में भी बड़ा सा कॉम्पिटिशन है पैसा कमाने के लिए, और दूसरे लोगों के सर के ऊपर चढ़कर लोग विजय प्राप्त करना चाहते हैं इस दुनिया में, आप देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हरेक जीव इस दुनिया में जीने के लिए उसको स्पर्धा करना पड़ता है, इतना तक कि बाघ और शेर को भी। देखिए बाघ जो है जब वो गुफा से बाहर निकलता है तो एक पंछी है वो आकर उसके पीछे बैठता है, बैठकर ऐसा आवाज करता है वो, तो उस आवाज को सुनकर सब हिरण भाग जाते हैं क्योंकि उनको सिग्नल मिल जाता है कि अभी बाघ बाहर निकला है। तो इतना बाघ उससे क्रोध करता है इस पंछी से, अरे मूर्ख तुम्हारे कारण मेरा भोजन आज मिल नहीं रहा है, लेकिन बाघ उसको मार भी नहीं पाएगा क्योंकि पीछे आकर बैठा है वो, महसूस करेगा वो क्या कर पाएगा वो, नहीं तो ऊपर जाकर उड़कर एक पेड़ के डाले में बैठता हो। इस तरह बाघ और शेर को भी कठोर परिश्रम करना होता है इस दुनिया में। जैसे एक मछली है पानी में तैर रहा है, दूर से देखता है कि और एक मछली आ रहा है उसको निगलने के लिए, अभी अपने जान को बचाने के लिए भागता है। इस तरह आप देखेंगे कुत्ता हो कोई भी हो प्राणी हो, इस तरह मनुष्य में भी बहुत बड़ा स्पर्धा है, अपने अपने नौकरी को बचा कर रखने के लिए, अपने पैसे को बचा कर रखने के लिए स्पर्धा का दुनिया है। तो ये स्पर्धा प्रभुपाद जी भागवत के दूसरे श्लोक में पहले अध्याय में लिखते हैं, आध्यात्मिक दुनिया ऐसे एक दुनिया है जिधर किसी भी तरह का स्पर्धा नहीं है, उधर इट्स अ कॉम्पिटिशन लेस सोसाइटी। ब्रह्मा जी बताते हैं शेर और हिरण साथ में पानी पीते हैं यमुना में, ऐसे एक श्लोक बताते हैं ब्रह्मा जी, ये ब्रह्म मोहन लीला के अंत में बताते हैं, क्योंकि उधर किसी भी तरह का वैरी भावना नहीं रहता है आध्यात्मिक दुनिया में जंतुओं के जीवराशियों के बीच में ऐसे है। तो यह दुनिया में रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए भी लोगों को बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ता है इस दुनिया में ऐसे, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में जुड़ जाएगा उसके खर्चा भी कम होता है उसका। जैसे हमारे पुणे में एक विद्यार्थी 5000 खर्चा करता था उन दिनों में, अभी वो जब भक्ति में आ गया अभी 2000 खर्चा करने लगा बस। उनके पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि वो पहले अकेले घर में रहता था, वो बाद में दूसरे मित्रों के साथ रहने लगा, किराया कम हो गया, उसकी सब बुरी आदतें छूट गए, ये सिगरेट पीना शराब पीना सब छूट गए, तो इससे पैसा भी बचता है। इस तरह हमारे जीवन में कॉम्पिटिशन कम होता है जब हम भक्त बनते हैं, क्योंकि भक्तों के बीच में भौतिक दुनिया के लोग जैसे कॉम्पिटिशन नहीं है। और दूसरा चीज है, भक्त लोगों का आंक सीधा वैकुंठ में है, अगर हमें वैकुंठ प्राप्ति करना है तो हमारे शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जो भी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है उतना ही हम कमाएंगे, और हमें भौतिक स्पर्धा में हम जुड़ेंगे नहीं। भौतिक स्पर्धा को छोड़कर हमें आध्यात्मिक दुनिया की ओर मुड़कर उस दिशा में जाना चाहिए, भगवान का नाम लेकर भगवान के कथा का श्रवण करके, तो एक भक्त शांति और सुख को आसानी से अनुभव कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह की नाम जप से भौतिक लोभ भावना कम होता है। और हमें इच्छा होता है कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। तो अगर हम इस माया के चंगुल में हैं, हम लोग तीन गुणों के द्वारा माया हमें कंट्रोल में रखती है, अगर माया को छोड़कर हम ऊपर उठना है तो कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण के आश्रय से हम माया से ऊपर उठ जाते हैं। एक छोटा उदाहरण देकर हम ये प्रवचन को विराम देंगे। एक सचनंदन महाराज करके एक महाराज जी हैं इस्कॉन में। तो इस्कॉन में जुड़ने के पहले ये महाराज जी एक पेपर बॉय का काम करते थे। तो एक घर घर में जाकर पेपर न्यूज़पेपर डालकर आते थे, ऐसे जब छोटे लिखे थे वो। तो ये घर में जाते थे जिधर बड़ा घर था, वो कंपाउंड वॉल था, बीच में बगीचा भी था, तो वो बाहर से पेपर डालकर जाते थे। लेकिन वो मालिक ने बोला कि नहीं नहीं, तुम अंदर आकर मेरे पास दो, मैं तो इसी चर में मैं बैठा हूं, तुम अंदर जाकर मेरे पास देखकर तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, तैयार थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, बहुत बड़ा कुत्ता था उनके घर में। लेकिन कुत्ते को वो बोले कि कुत्ता का चिंता मत करो, कुत्ता तो बांधा गया है एक स्टील चेन से, तुमको कुछ नहीं करेगा, आवाज तो करेगा लेकिन काटेगा नहीं तुमको, तुम आ जाओ। ठीक, ऐसे रोज जाकर देखकर आते थे। कुत्ता भी ऐसे बोलता था ऐसे देखो। लेकिन एक दिन कुत्ता बैठा था जंजीरों के साथ, तो जब अंदर गए, जंजीर भी पास में था, कुत्ता भी था, लेकिन बांधा नहीं था वो, इसलिए जब अंदर गए गार्डन के बगीचे में, वो पीछे भागकर आ गया कुत्ता, बड़ा बड़ा एकदम मोटा कुत्ता। तो भागने लगे, वो भी पीछे करने लगा। उन्होंने सोचा कि हाथ में एक लाठी लेकर उसको मारो, लेकिन मारो मतलब हाथ को ही काटेगा वो, क्या किया जाए। तो उन्होंने जोर से चिल्लाया वो मालिक को, बचाइए बचाइए आपके कुत्ते से। उन्होंने एक विसल दिया वो कुत्ते को, टॉमी ऐसा करके विसल दिया, तो कुत्ता उनके पास भागकर पास बैठ गया जाकर, इनको कुछ नहीं किया वो। तो ये बोले, क्लास में बोला उन्होंने कि कृष्ण बोलते हैं, सब लोग दौड़ाइए, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हे अर्जुन, ये त्रिगुणों से बनाई हुई है माया देवी जो है त्रिगुणों को कंट्रोल करती है, उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। दुरत्या का मतलब है कोई भी पार नहीं कर सकता माया देवी को। जैसे हमने बोला, कुत्ता जो पकड़ता है, अगर आप भागोगे तो पीछे पड़ेगा वो, मारोगे तो काटेगा वो, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करना चाहिए, मालिक को बुलाओ। मालिक कौन है, मम माया दुरत्या। कृष्ण बता रहे, कृष्ण ही मालिक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे पुकारने से दुर्गा देवी छोड़ देती है जीवों को, समझते हैं कि अभी सही लाइन पर आ गया बच्चा, अभी है चलो, इसको इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक उन्होंने बोला कि इसको पकड़ो मत, छोड़ देती हो। इस तरह माया से ऊपर होने का ये तरीका है। हरिदास ठाकुर उन्होंने किया, 3 लाख नाम देते थे, तो माया देवी कुछ नहीं कर पाई उनको। तो इस तरह माया से बचने का ये तरीका है कृष्ण का आश्रय लेना। और ये तीनों सीस जो कंडीशन, कंडीशनिंग, कंट्रोल, कॉम्पिटिशन, इन तीनों को पार करके हम वैकुंठ गोलक वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम यह विधि विधानों को पालन करते हुए, 4 नियमों को पालन करना, हरे कृष्ण मंत्र को नियमित रूप से जपना, और प्रभुपाद की किताबों में पढ़कर और भी जानकारी लेना उससे, तो हम इस तरह का पाबंदी जो डाला जाता है, इस तरह की सब पाबंदी से हम मुक्त हो जाएंगे, जितना हम कृष्ण के शरण में आ जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। थैंक यू वेरी मच।